Om Namah Shivaya. सिद्धांत चक्रवर्ती लिखित जो लब्धिसार ग्रंथ है उसके आधार से प्रथम ऑप्शन सम्यक जब होता है उसके पहले क्या क्या बातें होती है कर्म में और जीव के परिणामों में उसको यहाँ पंच लब्धि के स्वरूप में बताया जा रहा है। अभी अपना मूल विषय शुरू हो जाता है ये प्रथम ऑप्शन सम्यक क्या है और वो कौन जीव उसको प्राप्त कर सकता है इसकी बात यहाँ चलेगी। अभी तक तो हमने कर्म के कुछ पारिभाषिक शब्द देखे हैं। 53 पर आए थे हम, पांच लब्धि के नाम भी हमने देखे थे। ये नाम कौन बता सकेगी, हमने देखे आज? हाँ बोलो जयंस, हम हाँ आप बताना चाहते हैं, बोलिए। नहीं बिना बिना देखे हाँ बोलो भाई, कौन बताना चाहते हैं बिना देखे? चेतना बेन बताएंगी, बोलो।
क्षोभम
लब्धि,
विशुद्धि लब्धि,
विशुद्धि लब्धि,
देशना लब्धि,
देशना लब्धि,
प्रायोग्य
लब्धि,
प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये पांच लब्धि के नाम है। ये लब्धि क्या होती है? हाँ आप भाई साहब को बुक देना, पीछे बहन जी के पास भी नहीं है,
एक पीछे भी देना।
ये बुक का नाम देखकर आपको लगा होगा ये लब्धि क्या होती है। तो लब्धि यानी कोई लाभ, कुछ प्राप्ति, तो सम्य यानी ये जीव के पर्याय की बात यहाँ चल जाएगी कि सम्य दर्शन नाम की जो पर्याय जीव की अवस्था उत्पन्न होती है उसके पहले पहले जीव में क्या क्या बातें बनती है और जीव के साथ जो कर्म बंधे हुए उसमें क्या क्या परिवर्तन होता रहता है इसकी यहाँ चर्चा चलेगी। तो अभी लब्धि के केवल हमने यहाँ नाम देखे हैं, उसका डिटेल अर्थ अभी हम देखने जा रहे हैं। तो पहले में पहले ये शब्द जो आता है प्रथम उपशम क्या होता है, तो उपशम ये विशिष्ट कर्मों की अवस्था है, सम्यक तो प्राप्त होता है। तो ये जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है और एक अनंतानुबंधी नाम के जो क्रोध मान माया लोभ नाम के कर्म है, मिथ्या दृष्टि को उसका उदय पाया जाता है और जब सम्यक तो होता है तो क्या होता है, उसका उदय नहीं रहता। तो कर्मों का उदय न हो इसके लिए क्या क्या बातें हो सकती है उदय नहीं होने के लिए? तो एक तो सत्ता में है कर्म परंतु उदय में नहीं आ रहा, उसको कहेंगे उपशम। दूसरी बात क्या हो सकती है, बस सत्ता में से पूरा नष्ट हो गया, उसको कहते हैं क्षय। तभी यहां क्या है, मिथ्या दृष्टि है अभी, तो पहले में पहले उसका क्या होगा, उपशम होगा, उदय में नहीं आएगा और जीव को समय दर्शन की प्राप्ति होगी। तो ये ऐसी अवस्था कौन से जीव को होती है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, क्या पात्रता होती है, इसकी यहाँ अभी चर्चा चल रही है। अभी हम 59 पेज जो है जहाँ सम्यक्त्व के तीन प्रकार है।
हाँ,
क्षोभम किसे कहते हैं? तो क्षोभम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो क्षोभम सम्यक्त्व की बात जो है
आपने जो बताया ना कि उपशम जो सत्ता में नहीं है और क्षायिक में तो
आपका प्रश्न ऐसा है, उपशम का अर्थ है सत्ता में है उदय में नहीं है,
सत्ता में है, उदय में नहीं है।
क्षय यानी सत्ता में से नष्ट हो गया, और क्षोपशम किसको कहना? जो बात अब दोपहर में बहुत विस्तार से चली ना, तो क्षोपशम का अर्थ होता है, कल हमने स्पर्धक भी देखे थे, तो उसमें कोई स्पर्धक ऐसे स्ट्रांग होते हैं कि उदय में आवे तो प्रतिस्पर्धी का अपना नाश कर देवे, तो जिसको कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। और जो माइल्ड स्पर्धक होते हैं अनुभाग के, उदय में आवे तो भी नाश न करे, उसको कहेंगे देशघाती स्पर्धक। तो जब इस सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता, ये माइल्ड होकर उदय में आते हैं, तो उसको कहते हैं क्षयोपशम। यानी कुछ क्षय यानी वो पूरा नष्ट हुआ वाला क्षय नहीं समझना, वहां सत्ता में है, उदय में नहीं आ रहे है, परंतु उदय किस रूप से है? तो देशघाती रूप से उदय है, तो उसको कहते हैं क्षयोपशम। अब ये तीन प्रकार के सम्यक्त की बात चलेगी। देखो क्या है अपना विषय यहाँ सिद्धांत प्रवेशिका में मिथ्यात्व का चल रहा है, और अभी हम सम्यक्त के भी प्रकार देखेंगे साथ साथ, तो हमें चुनने के लिए काफी क्या चॉइस मिलेगा, हा? कौन सा मिथ्यात्व करना है या कौन सा सम्यक्त करना है, क्यों बेन? मेरे यहाँ 59 पेज हिंदी में है,
56
सम्यक्त के तीन प्रकार, 56 नंबर
गुजराती।
देखो सम्यक्त के तीन प्रकार है, औपशमिक या उपशम सम्यक्त, क्षौपशमिक या क्षोपशम, अथवा वेदक सम्यक्त, उसी को वेदक कहते हैं। दो ही नाम है, क्षोपशम सम्यक्त कहो या वेदक सम्यक्त कहो, एक ही बात है। और तीसरा है क्षायिक सम्यक्त। अब ये सम्यक्त संबंधी जो कोई प्रकृतियां हैं, एक तो है मिथ्यात्व प्रकृति, उसका उदय होता रहे तो वहां जीव के मिथ्यात्व पाया जाता है। सम्यक्त होने पर क्या होता है? मिथ्यात्व का उदय रुक जाता है। दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कर्म, हमने देखा है मोहनीय कर्म दो प्रकार का है, एक है दर्शन मोहनीय और एक है चारित्र मोहनीय। तो उसका कार्य क्या है? दर्शन मोहनीय ने श्रद्धा में विपरीतता लाने वाला वो दर्शन मोहनीय, और चारित्र का अर्थ होता है वितरागता, परंतु वो वितरागता नहीं होने देता तो क्या होता है? कषाय होते हैं, तो उसमें जो निमित्त है उसको कहते हैं चारित्र मोहनीय। तो यहाँ कहते हैं दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी कर्मों का उपशम, उसका अर्थ क्या देखा है? दब जाना, सत्ता में पड़े रहना, उदय में नहीं आना। तो या तो उपशम होगा या क्षोपशम होगा। एक क्षोपशम यानी क्या? उसके और आगे क्लैरिटी होगी, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना देखने को। या क्षय होगा, तो ऐसी अवस्था होने पर जीव में जो अवस्था पाई जाती है, कर्मों की अवस्था क्या होती है? उपशम, क्षोपशम या क्षय। तो उसके अनुसार यहां जीव में जो कोई उसके परिणाम हो रहे हैं, कर्मों का उपशम है तो जीव के परिणाम को कहेंगे औपशमिक। ये तो व्याकरण का नियम है। शरीर शब्द से क्या तैयार होता है? शारीरिक। मन से मानसिक। ऐसे ही यहां कर्मों में उपशम है तो जीव के भाव को कहेंगे औपशमिक। कर्म का वहां क्षय हुआ है, जीव का जो भाव है उसको कहेंगे क्षायिक, क्षय को क्षायिक। और कर्म में क्षोपशम हो रहा है तो जीव के भाव को कहेंगे क्षायोपशमिक। आपने केवल ज्ञान नाम सुना है ना भाई? नाम तो सुना है ना केवल ज्ञान? तो केवल ज्ञान को ही क्या कहते हैं? क्षायिक ज्ञान। क्यों? क्षायिक शब्द कैसे तैयार हुआ? क्षय, उसका अर्थ क्या है? यहाँ केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, यानी क्षायिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसका अर्थ क्या है? सामने उसका जो कोई प्रतिस्पर्धी होगा उसका क्षय हो चुका है। कर्मों का क्षय कौन से? ज्ञानावरण। क्योंकि ज्ञान के बारे में वो कोई अंतराय का क्षय होगा या मोनी का क्षय होगा, भले उसका क्षय वहां पाया जाएगा, परंतु क्षायिक ज्ञान होने में वहां निमित्त किसका है? ज्ञानावरण का क्षय। क्षायिक दर्शन हुआ यानी अनंत दर्शन प्राप्त हुआ, वहां सामने क्या होगा? दर्शनावरण का क्षय। इस तरह से हमें कर्मों की अवस्था और जीव के परिणाम एट ए टाइम होते हैं, उसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। कर्म जीव में कुछ नहीं करता और जीव भी कर्म में कुछ नहीं करता, फिर भी कथन क्या आता है, जीव ने कर्मों का क्षय किया। अरहंत भगवान ने चार घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, एक कथन पद्धति होती है, अपने जैन शास्त्रों की ऐसी ही कथन पद्धति है। हमें उसमें से सही अर्थ क्या समझना है, जीव अपने में लीन हो गया पूर्ण रीति से, परिपूर्ण अपने में ध्यान अवस्था में, जिसको कहते हैं चारित्र प्राप्त किए, अपने में लीन हो गया, अपने में गुप्त हो गया, तो क्या हुआ, कर्म जो थे वो अकर्म रूप हो गए, सत्ता में से निकल गए, निर्जरा हो गई उसकी पूर्ण रीति से, तब हम कहेंगे जीव ने उनका क्षय किया, जीव ने कर्म में कुछ नहीं किया। आपको क्या करना है कर्म का उपशम के क्षय, बोलो उषाबेन। हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत अच्छा है, ऐसे हम कहते हैं, कथन है बिल्कुल, परंतु हम उसका मर्म पहले समझना चाहिए। पहले में अभिप्राय में क्या लेना है, हम कर्म में कुछ नहीं कर सकते, ये पहले में पहली बात है। तो हम किसमें क्या कर सकते हैं, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय कर सकता है, तो जीव को चाहता तो है कर्म का क्षय करने के लिए, तो कहां देखना, कर्म की ओर, उसकी ओर देखने से क्षय नहीं होगा। तो क्या करना है, तो अपने में स्थिर हो जाएगा जीव, आत्मानुभव करके आत्मा में जब एकाग्र हो जाएगा तब कर्म अपने आप उसकी अवस्थाएं बदलेगी, ये तो क्षय की बात दूर हो जाए। अब तो प्रथम में प्रथम जीव तत्व विचार करने लगता है तो कर्म में कितनी बड़ी उथल पुथल होती है वो सारे हम देखने वाले, सहज होता है, जीव को कुछ नहीं करना पड़ता उसमें, फिर भी तत्व विचार की ऐसी महिमा है कि उसमें ये सारी बातें सहज हो जाती है, उसको हम देखने जा रहे हैं। अभी पांच लब्धि में पूरा यही आपको रहस्य कथा जैसे लगेगा सारा, कि ऐसी बातें सहज में हो जाती है। और हमें तो, हम तो चाहते हैं मोक्ष की बात, हर एक चाहता है और कुछ न कुछ करने की कोशिश भी करता है, परंतु ये सहज किस रीति से हो सकता है, इसकी बात यहाँ सब विस्तार से आ जाएगी, हम देखेंगे अभी। हाँ। तो हमने ये तीन नाम देखे, देखो उपशम के समय इन कर्मों के उदय का अभाव पाया जाता है, किसका अभाव है, उदय का अभाव, यानी सत्ता में पड़े हैं अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, इसको कहते हैं उपशम। कर्म सत्ता में तो पड़े रहते हैं परंतु अंतर्मूर्त काल तक दबे रहते हैं, कितने काल तक, उसके लिए भी मर्यादा है, कायम के लिए दबे रहने दो ना, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो उपशम अवस्था है, देखो जहां जहां अंतर्मूर्त शब्द आता है वहां पूरा 48 मिनट वाला वो नहीं समझना, अंतर्मूर्त कितना होता है, मिनिमम अंतर्मूर्त है आवली प्लस एक समय, फिर प्लस दो समय, प्लस तीन समय, ऐसे करते जाओ कहां तक, 48 मिनट का जो मुहूर्त कहलाता है उसमें एक समय कम, दैट इज मैक्सिमम बड़ा अंतर्मूर्त। तो ये जो अंतर्मूर्त तक दबे रहते हैं और जीव शुद्धोपयोग में है कहो या वो तो समय, तो उपशम समय तो का काल है, तो भगवान ने जैसा जाना है वैसा यथा योग्य अंतर्मूर्त समझना। हो सकता है कुछ सेकंड का हो, सेकंड का कुछ पार्ट हो या कुछ थोड़े सेकंड हो, इट डिपेंड्स।
सत्ता का तो टाइम ज्यादा भी हो सकता है,
सत्ता की बात नहीं है, दबे रहने की, उपशम की बात है,
जो सत्ता में होते हैं वही दबे रहते हैं,
सत्ता में है परंतु उदय में न आए, ऐसी बात चल रही
है अभी, मिथ्या टाइम हो गया है मगर उदय में नहीं आया,
मिथ्यात्व कर्म का उदय कब से है, अनादि से है, यानी अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है, तो क्या हो रहा है, उदय है तो यहाँ जीव का मिथ्यात्व भी परिणाम है, यहाँ कर्म का उदय और यहाँ मिथ्यात्व परिणाम कब से चल रहा है, अनादि से, तो जीव तो मिथ्यात्व हर समय कर रहा है, तो हर समय वह मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो जीव समय दृष्टि कैसे हो सकता है, पूर्व में बांधे है, हमने देखा था 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो लगातार उसका उदय होता रहेगा, तो छूटने का कोई रास्ता ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ उदय है तो यहाँ बिल्कुल भाव हो गए ही हो गए जीव के, तो इसमें से छूटने का रास्ता कुछ होना चाहिए, तो उदय तो मिटना चाहिए, जीव उन्हें भाव तो नहीं करना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो जब ये उदय कुछ काल के लिए मिट जाता है, वो कैसे मिटता है उसको देखेंगे हम। तो कुछ काल वो अंतर्मुहूर्त तक जीव को मिथ्या तो नहीं हुआ, तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो क्या होगा अंतर्मुहूर्त के बाद? मिथ्यात्व में भी जा सकता है या वो वेदक सम्यक तो हो सकता है, क्षोभन सम्यक तो हो सकता है। तो उसकी सारा प्रोसेस हम देखेंगे। तो अंतर्मुहूर्त काल तक दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते। किस सम्यक्त्व की बात चल रही है? उपशम सम्यक्त्व। क्षोभन सम्यक्त्व में क्या होता है? हमने तीन प्रकृतियां देखी थी दर्शन मुनि की, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। देखो अनादि से ही जीव जब मिथ्या दृष्टि है तो उसकी सत्ता में एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति है। क्यों? क्योंकि वो ही बंधने वाली प्रकृति है। जब पहली बार सम्यक्त होता है उपशम सम्यक्त, तो मिथ्यात्व में से तीन प्रकृतियां तैयार होती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब उपशम सम्यक्त का काल पूरा होता है तो या तो जीव फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो उसको एक मिथ्यात्व का उदय है और सत्ता में ये दोनों पड़ी है। ऐसा जीव, उसकी सत्ता में तीनों है ना, ऐसे जीव वेदक सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। उसका अर्थ क्या है? अब उसके मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो दबे रहते हैं और उदय किस रूप से चलता है? सम्यक प्रकृति रूप से। ऐसी अवस्था को कहेंगे क्षोभम सम्यक्त्व। क्योंकि हमने देखा है सम्यक प्रकृति एक कैसी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है। वो सम्यक्त्व का घात नहीं कर सकती क्योंकि उसका अनुभाग जो है, स्पर्धक जो है, वो अत्यंत मंद होकर वो मंद हुए है और उसका उदय चलता है। तो ये क्षोभम सम्यक्त्व है। अब यहां पढ़ेंगे क्षोभम सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन चार कर्मों इन छह कर्मों का उपशम रहता है और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। वो कैसी है प्रकृति? देशघाती प्रकृति है, उसके कारण सम्यक्त्व का घात नहीं करती। भाई कुछ समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा। यहाँ कोई एक फिगर भी थी ना तीन प्रकृतियों की, पहले सम्यक मिथ्यात्व वगैरह की। हाँ लास्ट ईयर आपने सीखा था, इधर थोड़ा ले लेंगे। देखो ये नाम हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है ना, पहली बार सुनते हैं। तो मिथ्यात्व जीव के परिणाम को भी कहते हैं और मिथ्यात्व नाम का कर्म भी है। वो दोनों का आपस में कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। नहीं है? हाँ हाँ लिया था, लास्ट ईयर इसमें होगा इस हाँ देखो सुनना, तब तक वो निकालेंगे।
तो बहन जी जब सम्यक प्रकृति का उदय है तभी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व उपशम
होगा। उपशमित है। उपशम का अर्थ क्या देखा ना? देखा हमने सत्ता में रहना, उदय में नहीं आना। तीन प्रकृतियां हैं, उसमें से मिथ्यात्व का अकेले का उदय हो जाए तो ये दो प्रकृतियां सत्ता में बनी रहती है। तो मिथ्यात्व के उदय में जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है, पहला गुणस्थान। मिथ्यात्व सत्ता में रहे, सम्यक प्रकृति भी सत्ता में रहे और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो क्या होगा? जीव को तीसरा गुणस्थान, जिसका नाम है मिश्र गुणस्थान या सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। अब ये दो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों दबे रहे और सम्यक प्रकृति का उदय होता रहे तो क्या होगा? सम्यक प्रकृति माइल्ड है, वो सम्यक्त्व को बाधा नहीं कर सकती, तो उसका उदय होता रहे और जीव को सम्यक्त्व भी चलता रहे, ऐसे सम्यक्त्व को क्षोभम सम्यक्त्व कहते हैं। ये उसकी अवस्था।
तो उपशम सम्यक्त्व अंतर्मुहूर्त में,
उपशम सम्यक्त्व अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली या तो वेदक सम्यक्त हो जाता है यानी क्षोभम सम्यक्त्व, डिपेंड्स और जीव के परिणाम बिगड़ गए तो मिथ्या तुच्छ भी हो जाता है, सम्यक्तो से गिरकर फिर दोबारा मिथ्या तो मिल जा सकता है। देर आर ऑल पॉसिबिलिटीज। अब किसनी कितनी पॉसिबिलिटी है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमें तीन प्रकार के सम्यक तो क्या है उसको देखना है, कोई बात नहीं है, अभी हम समझ गए। यहाँ से पढ़ेंगे हम, ख्याल में आ जाएगा आपको। कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव, देखो क्या कहा है, सादी मिथ्या दृष्टि। एक होता है अनादि मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि का अन आदि, जिसको शुरुआत नहीं है, अनादि से ही जो मिथ्या दृष्टि है, एक बार भी जिसने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है उसको कहेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। और जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त करके दोबारा वो जो मिथ्यात्व में आया है उसके लिए स्टार्टिंग प्वाइंट है ना मिथ्यात्व के लिए, क्योंकि बीच में सम्यक तो प्राप्त किया था, तो उसको क्या कहेंगे, स प्लस आदि, सादी, सादी मिथ्या दृष्टि। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अनादि मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोहिनी की कौन सी प्रकृति है, मिथ्यात्व। क्यों, उसका बंद होता है और उसी का उदय भी होता है। तो सादी मिथ्या दृष्टि में क्या होता है, क्योंकि सम्यक्तों के काल में वो एक में से तीन हो गई थी तो उसके फिर दोबारा मिथ्या दृष्टि हुआ तो उसके सत्ता में अभी तीन प्रकृति हो गई, उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। तो कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान में, पहला गुणस्थान यानी मिथ्यात्व गुणस्थान, पहले गुणस्थान में से क्षोभम सम्यक्त प्राप्त करके चौथे में जा सकता है। क्या कहा, कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो दो प्रकार के मिथ्या दृष्टि हो सकते, एक अनादि का मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि। तो जो सादी मिथ्या दृष्टि है तो वो चौथे में जाके निवेदक सम्यक्त या क्षोभम सम्यक्त के साथ चौथे में जा सकता है। हो सकता है कि किसी ने पूर्वभव में सम्यक्त प्राप्त किया था, छूट गया है, अब यहाँ अपने पंचम काल में तो सब मिथ्या दर्शन के साथ ही जन्मते हैं, तो यहाँ आकर उसने वेदक समय तो प्राप्त किया हो। तिर्यंचों में होता है, सेनारकियों में भी हो सकता है। अब कोई क्या होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसका कौन सा समय तो होगा, पहले में पहले उपशम समय तो होगा। भाई ख्याल में आता है, पहली बार सुनेंगे ना कि हमें भी आपकी जो कोई कंप्यूटर की बातें होती है या साइंस की बातें होती है वो हमें भी ऐसी लगती है, क्यों पहली बार सुनते हैं ना तो ऐसा होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखो हाँ। और कोई उपशम संयुक्त पूर्वक क्षोभम करेगा, दो रास्ते है ना, मिथ्यात्व ही था, मिथ्या दृष्टि था तो उपशम किया कर्मों का, और उपशम करके उपशम समय दृष्टि हुआ, और उपशम सम्यक दर्शन के बाद क्षोभम सम्यक दिवा। या जिसने पूर्व में कभी सम्यक तो प्राप्त करके छूट गया था उसकी सत्ता में तीन प्रकृति है, वो असंख्यात वर्षों तक बनी रहती है, तो उतने काल तक वो वेदक सम्यक तो प्राप्त करके डायरेक्ट वेदक सम्यक तो के साथ उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, चौथे गुणस्थान में जा सकता है। ये दो बातें हमने देखी, कौन से, उपशम सम्यक और क्षोभम सम्यक। और क्षायिक सम्यक्तों में इन कर्मों का सत्ता में से पूर्ण नाश पाया जाता है, हम कहते हैं वो क्षायिक सम्य दृष्टि। श्रेणिक राजा क्या था, पहले तो मिथ्या दृष्टि था, मुनि पर उपसर्ग किया, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ, बाद में क्षायिक सम्य दृष्टि हुआ, तो क्षायिक हुआ यानी क्या हुआ, अब जो वेदक सम्य दृष्टि जीव है अभी उसके क्या है, सम्यक प्रकृति का उदय है, और सत्ता में क्या क्या है, मिथ्यात्व भी है, समय मिथ्या तो भी है, अनंतानुबंधी भी है, परंतु उदय में नहीं आ रहे, तो जीव की विशिष्ट अभी वहां जो कोई उसकी विशुद्धि बढ़ती है, जो कोई प्रोसेस होता है, तो वो सत्ता में से सभी कर्म नष्ट हो जाते जितने वो सभी, तो उसको कहेंगे उन कर्मों का क्षय हो चुका। एक बार क्षय होने के बाद फिर दोबारा उन कर्मों से बंद नहीं होगा उसका, जो उपशमित थे और सम्यक प्रकृति का उदय था तो वो सारे के सारे नष्ट हो गए। उसका प्रोसेस कुछ अलग है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके टेक्निकल शब्दों में नहीं जाएंगे, तो अभी सत्ता में वे नहीं रहे। जब मिथ्यात्व कर्म पूर्णपणे नष्ट, पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, अनंतानुबंधी भी नष्ट हो गया है, अब जीव का ऐसा कोई परिणाम नहीं होगा कि वो दोबारा बन जावे। जिन कर्मों का पूर्णता सर्वथा नाश हो जाता है, जिसको हम क्षय कहते हैं, तो एक बार कर्मों का क्षय होने के बाद दोबारा उन कर्मों का बंध नहीं होगा। अरिहंत अवस्था में कौन कौन से कर्मों का क्षय पाया जाता है अरिहंतों को? चार घाती कर्मों का, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौन और अंतराय, इनका क्षय हो चुका है। क्या उस जीव को पुनः उन कर्मों का बंध होगा? नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? नहीं, क्षय हुआ है ना, अभी उसका बंध नहीं हो सकता। पूर्व में वो अनादि से क्या है, आठों कर्म है, और आठों कर्मों का उदय भी चलता है, तो उन कर्मों का उदय है और यहाँ जीव राग द्वेष मोह करता रहता है, तो उन कर्मों का बंध भी होता रहता है। ज्ञानावरण कर्म क्यों बन रहे हमको? मोनी के कारण, राग मोनी के कारण सभी कर्म बनते। जब मोनीय दसवें गुणस्थान के बाद नहीं रहता बिल्कुल, पहले में पहले मोनीय कर्म का क्षय हो जाता है, पूरा क्षय। कौन सा? चारित्र मोनीय भी। उसके बाद ना ज्ञानावरण बनता है, ना दर्शनावरण बनता है, ना अंतराय बनता है, और बाद में जो बंधा हुआ है वो भी निर्जरा होकर क्षय हो जाता है। तो ये तो मैंने बोला ना, वस्तु स्वरूप है, वो जीव के फेवर में होता है। नहीं तो क्या है, इतना उसने सारा पुरुषार्थ किया, कर्मों का क्षय कर दिया, सिद्ध भगवान भी बन गया, और फिर दोबारा लौट के संसार में आ गया। किस लिए आया? समाज का कल्याण करने के लिए।
कोई भाव होता
है, मगर ऐसे भाव उन जीवों को उत्पन्न होने का कारण नहीं है। देखो, पर के प्रति दया भाव होता है हमें, क्यों होता है? क्योंकि हमारे चारित्र मुनि का उदय है। और अरिहंतों को क्यों नहीं दया भाव होता है? अरिहंतों को दया भाव होता है कि नहीं, पहले ये देखेंगे। तीर्थंकरों को कुछ दया भाव है कि नहीं जीवों के प्रति? हाँ, है ना, तभी तो उपदेश देते हैं ना। क्या कहते हैं आप? वीतरागी और सर्वज्ञ है भाई। पूर्व अवस्था में उनको दया भाव, करुणा भाव था, लोगों को ये बात समझ में आवे ऐसा अंदर शुभ भाव होता था। उस कारण उस काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। बाद में वो मुनिराज हुए, अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई, पूर्ण वितराग हुए। अभी उनको कोई इच्छा नहीं है, समझाने का कोई विकल्प नहीं है, कोई शुभ भाव नहीं। अभिशुभ तो पहले ही चला गया, शुभ भाव भी कोई नहीं है, परंतु पहले की वो प्रकृति बंधी है ना कर्म की, तो बंधी है, तो उदय आए बिना छुटकारा नहीं है। तो तीर्थंकर किसका? तीर्थंकर प्रकृति का।
नहीं,
चारित्र मोहिनी का क्षय हो चुका किसे? कभी दसवें गुणस्थान में। हाँ,
आप बोलिए बराबर।
हाँ, आपके ऊपर पूरा प्रश्न पूछना। हाँ,
जो आपने पहला बताया ना कि जो उपसम में जो कर्म थे उसका
क्षय हो गया,
जब समय प्राप्त हुआ।
हाँ, क्षायिक समय दृष्टि हो गई। हाँ,
वो टाइम में वो चारित्र मोहिनी का जो उपदेश देने की जो
भाव
है उसका क्षय नहीं होगा।
हाँ, आपका प्रश्न है, पहले में पहले जीव क्षायिक समय दृष्टि हुआ तो उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्षय हो चुका, वो दर्शन मुनि का क्षय हो गया, क्षायिक समय दृष्टि हुआ। अब मुनिराज हो गए मान लेते, तो उनके अभी चारित्र मुनि बाकी है। कौन कौन से चारित्र मुनि? अनंतानुबंधी गया है, चार प्रकार के है क्रोधमान माया लोग, अनंतानुबंधी गया है। अभी कौन कौन है? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अब मुनियों को ये दो का उपशम है और इसका उदय है। अभी उसका क्षय कब होगा? वो छठे सातवें वाली जो अवस्था है, अब वो क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे, आठवां गुणस्थान, फिर नौवां, फिर दसवां। तो नौवे गुणस्थान में मोस्टली सभी का क्षय हो जाता है, मोस्टली। और दसवें गुणस्थान में एक सूक्ष्म लोभ रहता है, उसका भी क्षय वहां हो जाता है। तो उसी अवस्था में उनके सारे जो उपदेश देने के भाव है, जो कोई शुभ भाव है, लोग समझे ऐसी जो करुणा भाव है, इस सब का नाश हो चुका, क्षय हो चुका पूर्ण रूप से। बारवा गुणस्थान प्राप्त हुआ तो जीव पूर्ण वीतराग हुआ है, अभी उसके कोई राग भाव है ही नहीं है, अभी भी उसको हम केवल ज्ञानी नहीं हुए, अभी उस अंतर्मूर्ति के बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। अब वे तीर्थंकर प्रकृति ऑलरेडी बांधी है पूर्व में, सत्ता में पड़ी थी, अब उसका उदय शुरू हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है, सहज रूप से अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध, वहां समोचरण आदि की रचना करते हैं, देव आते, उनके उस पुण्य का उदय चल रहा है, उस पुण्य से उनको कोई लगाव नहीं है, वो पुण्य के कारण वो उनको बोलना पड़ता है, इसे पराधीनता भी नहीं है, परंतु सहज ऐसी वहां जो दिव्य ध्वनि आदि के ना, क्योंकि वो तो पुद्गल की रचना है सारी, सहज ही पूर्व में उन्होंने ऐसे भाव किए थे, ऐसी वहां कर्म प्रकृति बंधी थी, अब उनके अभी वचन योग आदि जो सारा योग यानी वो आत्मा का कंपन वगैरह चलता है, तो ऐसी ध्वनि निकलती है जिसको ओम ध्वनि कहते हैं, सर्वांग में से, जैसे हम जीव वगैरह यानी अपना उपयोग पूर्वक या योग पूर्वक उसका हलन चलन होता है, ऐसे उनके कुछ नहीं होता है, सहज रूप से दिव्य ध्वनि खिरती है, और उसको सुनकर गणधरों को भी ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि उनके वो सब ज्ञान में आता है, फिर वो शास्त्रों की रचना करते हैं और फिर वो उपदेश चलता रहता है। परंतु उनका जब उपदेश चल रहा है, जब समोचरण में भगवान विराजमान है, तब उनके कोई समझाने का राग भाव नहीं है, उनके कोई इच्छा नहीं है, ये इच्छा के बिना ही सहज ऐसा वस्तु स्वरूप है, क्योंकि हमने देखा ना भगवान किसको कहना, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वो भगवान है। पूर्व अवस्था में समझाने का विकल्प था, सभी जीव समझे ऐसा विकल्प था, उसके कारण तब उनके पुण्य प्रकृतियां बंधी थी, अब जब सबका क्षय हो गया यानी वो शुभ भाव वगैरह कुछ नहीं रहे, परंतु जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी उसका तो उदय आने से ही रहा, तो उसके कारण वहां पर दिव्य समोचरण की रचना होना, दिव्य ध्वनि खिरना आदि बातें सहज में होती है। परंतु अभी जैसे हम लिखते हमें आपको समझाने का राग है, ऐसा राग भगवान को नहीं होता। हाँ बोलिए।
तो ये तीर्थंकर प्रकृति जो बांधते हैं बोलते हैं कथन चीज जो है, मगर वो तो फिर दूसरे अजंतों को नहीं है।
हाँ।
तो वो क्या चीज है जो प्रकृति कैसी बनती है, क्या करने से हाँ। बनती है?
आपका ऐसा प्रश्न है, ये तीर्थंकर प्रकृति अन्य अरियंतों को नहीं है, विशिष्ट अरियंतों को ही है, जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तो क्या करने से ये प्रकृति बनती है? तो विशिष्ट राग से। कौन सा राग? अभी हमने देखा ना कि जो समझाने का राग, वो अकेला नहीं है। जैसे आपने अगर सुना होगा जिसको षोडश कारण भावना कहते हैं, कौन से? दर्श विशुद्धि है, ज्ञानाभ्यास है, विनय है वगैरह वगैरह, ये जो बातें होती है। और कोई ऐसे वो करने से होगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम कहें ना किससे बनती है, तो हमने शास्त्र में पढ़ लिया इतना कि ये करने से ऐसे शुभ भावों से ये प्रकृति बनती है, तो हमने क्या सोचा, हम भी ये भाव करेंगे और हमको भी प्रकृति बंधेगी। क्यों ना बंधे, क्योंकि हम भी सबको समझाना चाहते हैं ना, तो जिसको ऐसी इच्छा है उसको वो प्रकृति बनती ही नहीं। दूसरी बात, तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को ही होता है, और वो भी किसको? कर्म भूमि के मनुष्यों को। और वो भी कब, उसकी स्टार्टिंग कब हो जाती है? तो तीर्थंकर के या केवली के पाद मूल में ही उसकी बिगिनिंग होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ कब होता है? कर्म भूमि का मनुष्य, कोई देव आए और तीर्थंकर के समोचन में बैठे तो उसको वो उसकी बिगिनिंग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो विशिष्ट उसकी जो विशुद्धि होती है, जिसको कहते ना सम्यक दर्शन की जो दृढ़ता है या उसमें अधिक जो स्थिरता है, और वो सहज रूप से ऐसे भाव करने नहीं पड़ते हैं। ये तो शुभ भाव या अशुभ भाव उस जीव को सहज होते हैं, जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंधनी है उसको वैसे भाव भी होगे निमित्त रूप से, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, हम सोचने से हमें वो बंधेगी ऐसी बात नहीं है, परंतु किसके बनती है कि जिसके ऐसा विकल्प सहज रूप से आता है। देखो जैसी जिसकी होनहार है वैसे विकल्प भी उसको आते हैं, ये क्रिएटिविटी के भी विकल्प आते हैं भाई, वो घड़ा बनने की योग्यता मिट्टी में पड़ी है, उस समय पड़ी है, तो विशिष्ट कुम्हार को वो उसका विकल्प भी आता है, वो भी निमित्त में लेना। उस दिन आपका प्रश्न था ना, तो संस्कृत में भी कहते हैं ना कि तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। उसका अर्थ क्या है, बुद्धि भी वैसे ही होती है जैसी भवितव्यता है ना, जैसी जो पर्याय बननी है वैसे ही उस किसी जीव को वैसा विकल्प भी आएगा। जिसको तीर्थंकर प्रकृति बननी है उसको वैसा विकल्प आएगा, और वो सोचने से नहीं बनती है, आती है, सहज ही हो जाती है। और वो तो पूर्व भव में बनती है कभी, तो फिर बाद में तीसरे भव में भी तीर्थंकर बनते हैं। किसी किसी को उसी भव में बनती है, उसी भव में तीर्थंकर होते हैं। देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज, अभी हम आगे देखेंगे। औपशमिक या उपशम सम्यक्त्व के दो प्रकार है, मिला प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अपने इस पुस्तक का नाम ही है प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पूर्व होने वाली पांच लब्धि। पहली बार वह प्रथमोपशम और दूसरी बार हुआ वह द्वितीयोपशम, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। क्या कहा, ऐसा नहीं है, तो क्या है उसको देखेंगे। प्रथम ऑप्शन की बात तो हमने देखी थी, क्या देखी कि मिथ्यात्व अवस्था में विशिष्ट है कौन से दर्शन मुनि और अनंतानुबंधी का उपशम करके सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तब उसको प्रथम ऑप्शन कहेंगे। तो पहली बार हुई ना, हाँ पहली बार हुआ तो उसको प्रथम ऑप्शन कहेंगे ही कहेंगे, परंतु ऐसा जो फिर मिथ्यात्व में आ गया, फिर वो दोबारा उपशम करके सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तो भी उसको प्रथम ऑप्शन ही कहेंगे। हाँ शादी है, हाँ फिर भी उसको, हाँ बहुत अच्छा। अरे ये इंटेलिजेंट हमें तो ऐसे ही चाहिए ना श्रोता,
हमारे प्रेसिडेंट
हैं। नहीं अच्छी बात है, देखो हमें पता चलता है कौन किस भाव से कैसा ग्रास कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी से सुन रहा है। ये बातें ऐसी नहीं है, भले कोई बोले नहीं बोले फिर भी वो पता चल जाता है। तो अभी हमने क्या देखा है, द्वितीय दूसरी बार भी उपशम करके वो किया है, तो भी हम उसको प्रथम उपशम कहेंगे। फिर कुछ काल के बाद वो मिथ्या दृष्टि हुआ, फिर कुछ काल बीच में चाहे फिर दोबारा उसने उपशम करके समय तो प्राप्त किया तीसरी बार, तो भी क्या कहेंगे प्रथम उपशम। तो क्या इसे बार बार गिरना पड़ता है, पड़ता है की बात नहीं है, पड़ सकता है, क्योंकि केवल ज्ञानी ने सब कुछ जाना है ना, तो कितनी बार कोई जीव मैक्सिमम गिर सकता है, अरे असंख्यात बार गिर सकता है, असंख्यात बार सम्यक तो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, डरने की बात नहीं है। देखो कोई व्यापार करता है तो उसमें से कोई बैंकरप्ट भी होता है कि नहीं होता, या मेडिकल में अभी कौन है डॉक्टर, कोई बैठे कि नहीं, उषा बने ना, हाँ हाँ। तो हम देखते हैं कि इतने सारे नॉर्मल है, उसमें एबनॉर्मेलिटीज भी होती है ना कभी, इतने 10 मिलियंस में एक आध ऐसी केस हो जाती है, ऐसे उसका भी रिकॉर्डिंग होता है मेडिकल बुक्स में। ऐसे ही यहाँ जो कोई गिरते हैं उसको भी केवल ज्ञानी ने तो जाना है, तो उसका कथन भी करते हैं। तो ये सुनकर हमें नहीं चाहिए, गिरना है तो हमें प्राप्ति नहीं करेंगे, क्यों तो मिथ्या तो ही बने रहेंगे, अनादि से जन्म मरण करते आए है और अनंत काल करते रहेंगे। तो ये तो फैक्ट क्या हो सकती है उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो जब कभी मिथ्यात्व में से कर्मों का उपशम करके सम्यक्त्व तो प्राप्त होगा, भले पहली बार हो या सौवीं बार हो, तो उसको क्या कहेंगे, प्रथम उपशम सम्यक्त्व। और द्वितीय उपशम किसको कहना उसको अभी देखते। देखो जब छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज जो क्षोपशम सम्यक्त्व के धारी है, हमने देखा ये जो प्रथमोपशम के साथ जो कोई छठे सातवें में भी चला जाता है और वो अंतर्मूर्त के बाद फिर वो क्षोपशम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, ऐसे मुनिराजों का जो गुणस्थान है उसको छठा सातवां कहते हैं। कॉन्स्टेंटली वो छठे से सातवें, सातवें से छठे चलता रहता है उनका। तो ऐसी जो अवस्था है उनकी क्षोपशम सम्यक दृष्टि है।
उपशम में तो छठा सातवां नहीं जाता,
हाँ होता है, होता है, हजारों बार, 48 मिनट
में
हजारों बार होता है, हजारों बार, क्योंकि हमें अंतर्मूर्त का पता नहीं ना, छठे का काल भी अंतर्मूर्त, सातवें काल का भी अंतर्मूर्त, दोनों मिलकर भी अंतर्मूर्त, और वो हजारों बार होता है तो भी उपशम सम्यक तो के अंतर्मूर्त काल में छठा सातवा गुणस्थान हजारों बार आता है।
अंतर्मूर्त
के बहुत सारे भेद है।
कितने समय
हमने देखे ना अभी आवली प्लस एक समय, आवली में कितने समय होते हैं मालूम है? असंख्यात। कितने असंख्यात? जगन्य युक्त असंख्यात। अभी हमें स्पेसिफिक असंख्यात मालूम नहीं है, परंतु वो मिनिमम मोस्ट जो अंतर्मूर्त है। अरे एक सेकंड में तो ऐसे सैकड़ों आवली होती, हजारों आवली होती, और एक आवली में इतने असंख्यात समय होते हैं, उसको भी हम अंतर्मूर्त कहेंगे? यानी सेकंड कितने काल में पूरा समय दशम प्राप्त हो सकता है, इसकी तो क्या बात। नौवा गुणस्थान में आप अगर बाय चांस पढ़ोगे ना, 150 पेजेस तो नौवे गुणस्थान का वर्णन है,
लब्धिसार
में ये सारी बातें आती है, तो उसके ऐसे हजारों हजारों अंतर्मूर्त जाते हैं, और एक एक अंतर्मूर्त में वो हजारों बार वो स्थिति कांड गा दिए, वो ऐसे बहुत सारे उसमें प्रोसेस होते हैं। देखो मुनियों का कैसा गजब का ज्ञान है, और उन्होंने सब लिख के रखा है, और हम ऐसे है कि हमको वो पढ़ने को फुर्सत नहीं है। एक ज्ञान का खजाना जितना हमारे पास है, और अभी कोई इन्वेंशन होते तो हमें लगता है अरे क्या साइंटिस्ट की बुद्धि है। ये जब आपने जैसे कैलकुलस है, लॉग है, ये सब हमारे प्राकृत में, मूल प्राकृत में उसके सारे गाथाएं हैं। फटाफट असंख्यात और अनंतों के गणित में अभी बता दूं, आप कंप्यूटर पर कैलकुलेटर पर करते रहना, मैं आधे मिनट में आपका उसका उत्तर निकाल के दे दूंगी। ये सब हमारी धरोहर है, अपने घरों में पड़ी है, पता नहीं ना।
समय ज्ञान चंद्रिका भेजिए,
समय ज्ञान चंद्रिका देखी ना आपने, उसमें संदृष्टि अधिकार देखना लास्ट वाला, कैसे कोड लैंग्वेज में भी सारी आपने देखे होंगे, क्यों ग्रंथ देखे कि नहीं देखे? अभी हम बढ़ेंगे आगे, देखो तो जो छठे सातवें गुणस्थान वाले क्षोभषम समय दृष्टि मुनिराज है, वो जब उपशम श्रेणी चढ़ते, उपशम श्रेणी का अर्थ क्या है, देखो ऊपर के गुणस्थानों में जाना, छठा सातवा उनका रेगुलर गुणस्थान है। जब मुनिराज आत्मा में और लीन हो जाते हैं तो कोई आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां गुणस्थान, और फिर उसी क्रम से नीचे आते हैं, ग्यारहवें में से दसवें, नौवें, आठवें, फिर सातवां, छठा, सातवां, छठा चलेगा, उसको कहेंगे उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी क्यों कहेंगे? देखो उनके तो अभी दर्शन होने की बात नहीं है, क्योंकि उसका तो मिथ्यात्व का वगैरह उदय तो है ही नहीं, क्योंकि वो समय दृष्टि है। अब चारित्र मोहनी जो है उसका उपशम करके वो चढ़ते हैं, और ग्यारहवें गुणस्थान में अरिहंत जैसी पूर्ण वितराग अवस्था एक अंतर्मूर्त तक करके फिर वापिस हमेशा के वो छठे सातवें गुणस्थान में लौटते हैं, सहज रूप से होता है, उसका कहते हैं उपशम श्रेणी। और किसी की विशुद्धि इतनी बढ़ती है आत्मस्थिरता कि वो सातवें, आठवें, सातवा तो था, आठवां, नौवां, दसवां और बारहवां गुणस्थान, तो बारहवें में जाते हैं तो दसवें में वो मोहिनी का क्षय हो जाता है, और बारहवें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय हो जाता है, और वो उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहते हैं क्षपक श्रेणी। वही ली कौन सी थी? उपशम श्रेणी। चारित्र मोहिनी का उपशम किया, प्रथम उपशम सम्यक तो में हमने किसका उपशम देखा? दर्शन मोहिनी का उपशम देखा। श्रेणी में क्या होता है? चारित्र मोहिनी का उपशम हुआ तो उपशम श्रेणी, और चारित्र मोहिनी का पूरा क्षय हो जाएगा तो क्षपक श्रेणी। तो हम कितने गांवों में हमें पूछते वो बिचारे उपशम श्रेणी क्यों चढ़ते हैं? कौन बिचारे? कौन कह रहा है? मिथ्या दृष्टि जो क्या पूछ रहा है वो बिचारे? हमको मालूम है कि उपशम श्रेणी से गिरना पड़ता है, तो वो उपशम श्रेणी क्यों मानते हैं? ये सोच समझ कर कुछ मानना बिनना नहीं होता है, जीव तो अपने उपयोग में यानी शुद्धोपयोग में लीन होता है, और वहां सहज रूप से ऐसी अवस्थाएं बनती है, और जिनकी और विशुद्धि और एकाग्रता होती है उपशपक श्रेणी मानकर उनके केवल ज्ञान हो जाता। तो ऐसी जो उपशम श्रेणी मानते हैं,
क्षोपम श्रेणी नहीं होती,
क्षोपम श्रेणी नहीं होती, क्योंकि क्षोपम सम्यक्त्व के साथ श्रेणी वाली जो अधिक वितरागता है वो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां सम्यक प्रकृति का उदय है, वो भले सम्यक्त्व में बाधा नहीं डालती। सातवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है, परंतु आठवें, नवें ऊपर के गुणस्थानों का पुरुषार्थ सम्यक प्रकृति के उदय में नहीं होता।
चलो,
तो उसमें कुछ चलमली नगाड़ दोष होते हैं सम्यक में, तो सातवें गुण स्थान तक जीव जा सकता है, ऊपर नहीं।
तो सातवें गुण स्थान तक जा सकता है,
जा सकता है। तो क्षोपशम में से फिर दोबारा द्वितीय उपशम करता है, उसी की बात यहाँ आती है। यानी एक प्रकृति का उदय था ना, क्षोभ कौन सा, सम्यक प्रकृति का उदय था, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में है। ऐसे मुनिराज क्या होता है उनका, अब ये सम्यक प्रकृति का उदय है, तो ये तीनों में कुछ अंतर और उपशम हो जाता है, और वो तीनों ही उपशमित होती है, और उस उपशमित अवस्था में फिर उनका श्रेणी का पुरुषार्थ हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो द्वितीयोपशम किसे कहना, भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं। द्वितीयोपशम कब होता है, छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज जो क्षोपशम सम्यक दृष्टि है, उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले जो तीनों का फिर दोबारा उपशम करते हैं, तो उसको कहते हैं द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। और फिर ऊपर चढ़ते तो क्या करते, चारित्र मुनि की उपशमना करते। तो क्या वो द्वितीय उपशम वाले क्षोपशम क्षपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को दबाया, जिसको हम कहेंगे द्वितीय उपशम किया, ऐसा जो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा,
उसी टाइम पे तो नहीं चढ़ेगा, पढ़ने के बाद चढ़ सकता है।
पढ़ने के बाद क्यों नहीं चढ़ेगा, क्योंकि सत्ता में है ना, दबे हुए है। यदि क्षपक श्रेणी चढ़ेगा तो क्षय कैसे करेगा, यदि उपशम किया तो क्षय कैसे करेगा। तो जिसने ऑलरेडी क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया है, ऐसा ही जीव क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है। हाँ, कम्प्लीटली जिसने क्षय किया है वो क्षपक श्रेणी चढ़ता है ना, चारित्र मुनि का क्षय करेगा। पहले दर्शन मुनि का क्षय हो जाएगा, फिर चारित्र मुनि का क्षय हो जाएगा। अब हम फिर लौटते हैं, अपना तो मूल विषय अलग है। हाँ, देखो क्षपक श्रेणी कौन चढ़ेगा, आठवां नौवां दसवां बारहवां और अभित्रा यानी अरिहंत कौन होंगे, जिसने पहले क्षायिक सम्यक को प्राप्त किया है,
वो सिक्स में प्राप्त होता है।
हाँ, वो चौथे से लेकर सातवें तक कहीं भी प्राप्त हो सकता है। जैसे हमने देखा श्रेणी के राजा को क्षायिक सम्यक तो है, था, अभी तो वो नारकी है, फिर भी हम उसको भूत निगम ने इसे क्या कहते हैं, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से अभी भी हम उसको श्रेणी के राजा कह रहे हैं, अभी वो राजा नहीं है। बेन उषाबेन, इसको निक्षेप कहते हैं। जैसे आपने पूछा था वो मूर्ति को यानी पत्थर को हम पूछते हैं महावीर भगवान मानकर, वो जैसे निक्षेप था ना, उस वस्तु में हमने स्थापना की है ये महावीर भगवान है, तो उनके साथ महावीर भगवान जैसी विनय, उनकी पूजा, सब कुछ व्यवहार होता है। अब हम वो नारकी जीव को श्रेणी के राजा कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारा पहले तीर्थंकर भविष्य का श्रेणी के राजा होगा, ये कैसा कथन है, झूठा है क्या सच है, इसको कहते हैं निक्षेप। पूर्व में वो श्रेणी के राजा था, वही जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य को हम पूर्व अवस्था से बुला रहे हैं, और उसकी भविष्य की अवस्था जो तीर्थंकर है वो भी श्रेणी के राजा पर उपचार करे, वो श्रेणी के राजा हमारे तीर्थंकर होंगे, ख्याल है ना। इसको भी निक्षेप में, वो कौन सा टाइप ऑफ निक्षेप उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये निक्षेप के अलग अलग, उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। तो ये निक्षेप के अलग अलग है, वो झूठा नहीं है, वो सत्य है, विशिष्ट अपेक्षा से उसको देखना है। ऐसे हम उसको पत्थर को नहीं पूज रहे, कल बात आपने पूछी थी ना, हम पत्थर को नहीं पूजते हैं, वो जो मूर्ति है ना जिसमें पंच कल्याणक की स्थापना नहीं की है, उसको हम पूजन भी नहीं कर सकते। भाई भले घरों में रखी हो, हमें याद आए इसलिए रखे, जैसे हम फोटो है, फोटो की भी ऐसी पूजन नहीं होती है जैसे भगवान के साथ पूजन व्यवहार वगैरह होता है, बिल्कुल समझना, क्योंकि ये तो जिनागम से ये बात आई हुई। जो निक्षेप होते हैं, जैसे किसी का नाम रख दिया, तो नाम रखने में तो कोई उसके जरूरी नहीं, महावीर नाम रखा तो जरूरी नहीं कि महावीर भगवान है, परंतु जब हम मूर्ति को महावीर कहते हैं, स्थापना निक्षेप किया है, तो जैसे भगवान महावीर है, साक्षात महावीर भगवान जो समोशरण में विराजमान थे, उनकी हमने स्थापना की है, अब उस मूर्ति के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा? पत्थर जैसा नहीं होगा। अब वे भगवान महावीर है, पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ है हमारे लिए, इसलिए हम उनकी पूजन भक्ति सब करते हैं। इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। ऐसे और भी निक्षेप होते हैं, अभी हम बढ़ेंगे अपने विषय पर। हाँ बोलो।
अभी आपने बताया कि वो क्षयोपशम सम्यक्त्व के धारक मुनि है, वो द्वितीय
ऑप्शन करते हैं।
अभी जो चौथा दृष्टि चौथे गुण स्थानक का जीव होगा वो उपशम सम्यक्त्व का धारक है और वो अभी मुनि बनेगा, तो वो द्वितीय उपशम वो कैसे होगा? और अपेक्षायक सम्यक्त्व वाला होगा मुनि होगा।
तो देखिए देखिए, हमने अभी देखा था कोई जीव मिथ्यात्व तो गुण स्थान में से प्रथम उपशम करके चौथे पांचवे या छठे सातवें में जा सकता है। अंतर्मूर्त तक तो उपशम सम्यक दृष्टि रहेगा, बाद में वो चौथा हो या पांचवा हो कोई भी हो, वो क्या होगा? क्षोपशम सम्यक दृष्टि होगा। क्षोपशम सम्यक दर्शन रूप से कितने काल तक रहेगा? मैक्सिमम 66 सागर काल तक। उसमें तो उसके कितने मनुष्य के भव, देव के भव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य, सम्यक तो चल रहा है ना उसका। सम्यक तो नहीं टूटता है तो वो अन्य भव में नहीं जाएगा। तो उसका मनुष्य देव में गया, देव में से मनुष्य आया, मनुष्य में से देव गया, वो सागरों तक चलता रह सकता है। हो सकता है उसके बाद वो क्षायिक हो जाए, परंतु क्षायिक होने के लिए कंडीशन क्या है? वो कर्मभूमि का मनुष्य होना आवश्यक है। हो सकता है वो चौथे का है, वो पांचवे का है, छठे सातवें गुणस्थान का, उस अवस्था में वो क्षायिक समय दृष्टि हो सकता है। अब ऐसे क्षायिक समय दृष्टि जीव अभी आयु का बंद किया हो तो वो देव में चला जाएगा, और नहीं किया हो तो उसी भूमि में मोक्ष भी चला जाएगा। हो सकता है, देर आर ऑल पॉसिबिलिटीज। बात ख्याल में आई है? अभी आगे बढ़ेंगे। अभी हम इतनी बात देखेंगे कि जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो वो किसे प्राप्त हो सकता है और किसे नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कुछ जो पॉइंट्स बताए हैं हम देखेंगे यहाँ पुस्तक में से। तो ये प्रथम ऑप्शन सम्यक तो किसे प्राप्त हो सकता है और किसे नहीं हो सकता, मिला आपको पुस्तक में? हाँ देखो, चारों गति वाला, यानी प्रथम ऑप्शन सम्यक तो किसको प्राप्त हो सकता है? चारों ही गति वाले जीवों को प्राप्त हो सकता है। क्या नारकी को भी हो सकता है? हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि है और अभी नरक में है, अरे उसको कौन वहां समझाएगा? उसको प्रथम ऑप्शन सम्यक्त हो सकता है। कोई तिरियंच है, कल पूछा था ना, तिरियंचों को कौन उपदेश देगा और वो कौन देगा, कैसे होगा, देशना कहां से मिलेगी, सब कुछ बातें आएगी, क्योंकि बिना देशना के किसी को भी सम्यक्त नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि देशना इस भव की हो या पूर्व भव की भी हो सकती है, वो तो देशना लब्धि के प्रकरण में बात आएगी। पहले हम यहां देख रहे हैं कि कौन कौन से जीव सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। कौन से सम्यक्त की बात चल रही है? प्रथमोपशम की। चारों गति वाला होना चाहिए, इसमें तो कोई है ना, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो या तिरियंच हो। अभी तिरियंच तो हमने देखे, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, वो बात आएगी उसमें से किसको होगा। भव्य होना चाहिए, ये जो सभी जीव है संसारी जीव, उसमें से भव्य भी हो सकते अभव्य भी हो सकते। अभव्यों को तीन काल सम्यक दर्शन नहीं होगा क्योंकि उनमें वैसी योग्यता नहीं है। आप पूछेंगे ऐसा कौन सा कर्म आड़ा आया कि उनको सम्यक तो नहीं होगा? हाँ बेन, कौन से कर्म के कारण वो अभव्य है? बोलो। हाँ बोलो प्रवीण भाई। कर्म के कारण भव्य या अभव्यपना होता ही नहीं, ऐसी ही उनकी सहज, ऐसी ही अनादि अनंत योग्यता है कि वो तीन काल में कभी भी सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते, उनमें वैसी योग्यता ही नहीं है। तो भव्यों में क्या है? योग्यता है। तो सभी भव्यों को सम्यक तो होगा कि नहीं होगा?
पॉसिबिलिटी
है हाँ, परंतु इतने अनंत भव्य ऐसे होंगे कि जो तीन काल में कभी सम्यक तो प्राप्त करेंगे नहीं, कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, सभी भव्य चले जाएंगे और यहाँ क्या होगा संसार का? हमें चिंता किसकी है, हमें पूछते लोग। अरे सभी 608 जीव मोक्ष जाते तो ये संसार खाली होगा, यहाँ का क्या होगा? अरे भगवान, इस संसार का क्या होगा, ऐसी चिंता लगती है। मेरा क्या होगा इसकी किसी को चिंता नहीं, ये समाज का क्या होगा, ये दुनिया का क्या होगा,
समाज के लिए करुणा भाव
है, ऐसा ही करुणा भाव होना चाहिए। क्योंकि वो संस्कृत में पढ़ते हैं ना, परोपकाराय सताम विभूते, संस्कृत में हमने पढ़ा था जब हम छोटे थे स्कूल में, ये नदियां क्यों बहती है, परोपकार के लिए, ये गाय दूध क्यों देती है, परोपकार के लिए, ये वृक्ष फल क्यों देते हैं, परोपकार के लिए। तो हमने भी सोचा चलो हम भी परोपकार करें, क्या पूरे सबको संभाले सुधारे, सबका कल्याण हो जाए, अपना भले कुछ भी हो जाए। तो देखो क्या है, हम भी पहले ये कंडीशंस देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे कल अधिक विस्तार से। तो ये भव्य होने चाहिए, आगे की कंडीशन क्या है नलिन में, क्या लिखा है आगे, पर्याप्त के आगे क्या लिखा है, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, क्या कहा। प्रथमोपशम सम्यक तो कौन प्राप्त करता है, जो मिथ्यात्व में से सम्यक दृष्टि होता है। अभी हमने द्वितीयोपशम सम्यक तो कौन प्राप्त करता है, वेदक सम्यक की, वो द्वितीयोपशम प्राप्त करता है छठा सातवा वाला। क्षायिक सम्यक तो को प्राप्त कौन करता है, वेदक सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक तो को प्राप्त करता है। यहाँ बात किसकी चल रही है, प्रथमोपशम कौन करता है, तो मिथ्या दृष्टि। तो कंडीशन आवश्यक क्या है, मिथ्या दृष्टि होना आवश्यक है।
तो कोयले से ही हीरा होगा ना।
तो देखो चारों गति वाला भव्य मिथ्या दृष्टि, अभी हमने तीन ही देखे, संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है। देव नारकी और मनुष्य तो संगी पंचेंद्रिय है ही है, परंतु तिर्यंचों में बहुत सारी वैरायटी है, एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक। तो उनमें संगी है ना मन वाले, मन की क्यों इतनी आवश्यकता है, ये जो सारा हम तत्वों का विचार करेंगे और निर्णय करेंगे, मैं कौन हूं इस संबंधी तत्व विचार चलेगा, तो ये तत्व विचार मन के निमित्त से वहां उस ज्ञान की इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसके तत्व संबंधी विचार चले, अपना स्वरूप का निर्णय करे। इसलिए संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है। आगे की कंडीशन पर्याप्त, पर्याप्त है ना, जब कोई जीव मरकर अन्य पर्याय में चला जाता है तो वहां पर्याप्ति होती है, जो छह पर्याप्ति है उसकी जो कुछ बिगिनिंग होती है शक्ति उनकी पूर्णता, उसके बाद उसके जो मन वचन आदि का कार्य शुरू हो जाता है, इसलिए पर्याप्त होना आवश्यक है। संगी पंचेंद्रिय जीवों में भी अपर्याप्त भी जीव पाए जाते हैं, अकेले निगोधी इतने छोटे भव में मरते ऐसा नहीं है। क्या कहा हमने, देखा एक श्वास में अठदश बार जन्मे मरे, यानी उसका एक भाव कितना है, श्वास का अठारहवा भाग। ये किस बात की, किसकी बात चल रही है, अकेले निगोद की नहीं, सभी अपर्याप्तों की। ऐसे अपर्याप्त जो एक इंद्रिय में भी हो सकते हैं, द्विंद्रिय में भी, तीनद्रिय में भी, चतुर्द्रिय में भी, पंचेन्द्रिय में भी हो सकते हैं, असंगी में भी, संगी में भी, और मनुष्य में भी। मनुष्य में भी श्वास के अठारहवे भाग मरने वाली अपर्याप्त अवस्था हो सकती है, जिसको सम्मूर्चन मनुष्य कहते हैं। नॉट ओनली निगोद, पृथ्वी का भी अपर्याप्त होते हैं, जल का भी अपर्याप्त है, सभी पर्यायों में अपर्याप्त जीव हो सकते हैं जिनकी इतनी छोटी लाइफ स्पैन है। तो ये पर्याप्त होना जरूरी है,
तो लंबी लाइफ, और
लंबी लाइफ इतना ही नहीं, वो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्ति पूरी होने पर उसके बाद उसमें ऐसी कंडीशन ऐसी योग्यता होती है कि सम्यक तो संबंधी विचार करे। मनुष्य भी पर्याप्त होता है, मान लेते एक छोटे अंतर्मुहूर्त में पर्याप्त हो जाता है, परंतु फिर वो 9 महीने पेट में रहेगा, फिर जन्मेगा और फिर 8 साल का होगा, उसके बाद वो तो पर्याप्त नहीं, पर्याप्त पहले हो चुका गर्भ में, बाद में उसको सम्यक तो होने की पात्रता हो सकता है। जो कोई सम्यक दृष्टि देव है वो माता के गर्भ में आता है तो सम्यक तो के साथ आता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। परंतु जो नए से अभी जो पंचम काल में सभी जो जीव है यहाँ आए हुए, तो मिथ्या दृष्टि ही जन्मे हैं, उनको सम्यक तो प्राप्त अर्लिएस्ट कब हो सकता है, 8 साल के बाद। तिर्यंचों में उनमें भी वो तो जन्म के बाद यानी गर्भ के बाद वो उनकी यथा योग्य जो कोई उनके भी कुछ महीने वगैरह बताते, क्योंकि ये प्रथमोपशम सम्यक की बात चल रही है, इसलिए यहाँ कहा पर्याप्त। आगे एक कंडीशन है गर्भज, ये गर्भज वाली कंडीशन मनुष्य और तिर्यंचों के लिए है। मनुष्य पर्याप्त तो गर्भज ही होते, गर्भ में आने वाले सभी मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं, भले वो गर्भ में उसका भी जो कुछ एक घंटे में हो या एक दिन में भी वो अबॉर्शन हो जाए, कुछ निकल जाए, फिर भी वो पर्याप्त मनुष्य भव है। तिर्यंचों में समूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। समूर्छन तिर्यंच वेदक सम्यक तो प्राप्त कर सकते, क्योंकि संगी पंचे लिए समूर्छन तिर्यंच एक करोड़ पूर्व की आयु वाले भी हो सकते हैं। ये सारे जो महामत्स्य हमने देखे हैं, कितने ही, सभी नहीं होंगे, परंतु उसमें कितने ही समूर्छन जीव होते हैं। तो समूर्छन जीव स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात है, पांचवे गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनमें वेदक सम्यक तो होता है, प्रथम उपशम सम्यक तो नहीं होता, इसलिए गर्भज वाली कंडीशन यहाँ बताई है।
ये फिर से बताइए,
फिर से दोबारा। ये समूर्छन जो तिर्यंचों में, तिर्यंच जो समूर्छन होते हैं, समूर्छन का अर्थ है माता पिता के निमित्त से नहीं जन्मे है, वातावरण में से ऐसे वो उत्पन्न होते हैं। पंचेन्द्रिय संगी जीव भी समूर्छन हो सकते हैं तिर्यंचों में, मनुष्यों में नहीं। तो ऐसे जीवों में भी सम्यक तो प्राप्ति की योग्यता है, परंतु वे क्षोपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं।
तो ऐसे जीवों में तो फिश,
हाँ, समूर्छन मनुष्य, हाँ। बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ फिश वगैरह होंगे। अभी इसकी और चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि विषय अधूरा है ना, और इसमें बहुत सारी डिटेल में चर्चा करेंगे अभी हम। हाँ,
मनुष्य आपने बोला गर्भ में है, वही पर्याप्त हो सकता है,
पर्याप्त हो सकता नहीं, पर्याप्त वो पर्याप्त ही है। हाँ,
तो मनुष्य में अपर्याप्त तो नहीं
होते, मनुष्य में अपर्याप्त होते हैं, परंतु वो गर्भ में आने वाले अपर्याप्त नहीं होते। मनुष्य अपर्याप्त जो समूर्छन मनुष्य कहलाते हैं, वो अलग वातावरण में निर्माण होते हैं, उनकी भी लाइफ स्पैन छोटी होती है। उसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे। अभी और बोलो, 2400 भगवान की जय।